ओम ज्ञान्तिमिरान्धस्यज्ञानञ्जन शलाके चक्षुरमीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभिस्तमस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वगान्धिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैश्वाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथानन्दं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्ताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में प्रह्लाद महाराज गुरु की महिमा का वर्णन किया है। जैसे आज हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभु जी आए हैं, इन्होंने गुरु के बारे में कैसा उद्घोष किया है, बिना गुरु के गति नहीं है। तो 24 नंबर श्लोक में प्रह्लाद महाराज कहते हैं, अन्वय भक्तिरेकेण विवेकेन उसता आत्मना स्वर्ग स्थान समापन्याय विमृषद भी असद्वरई। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन उसता आत्मना स्वर्ग स्थान समामन्याय विमृषद भी असद्वरई। अन्वय व्यक्तिरेकेण विवेकेन उस्त आत्मना स्वर्ग स्थान समामन्याय विमृषद भी असद्वरई। अन्वय अन्वय व्यक्तिरेकेण विवेकेन उस्त आत्मना स्वर्ग स्थान समापनाय हिमिष सद्वी असद्वरै। अन्नतिकेन विवेकेन उस्त आत्मना स्वर्ग स्थान समामनाय विमृषद भी असद्वरई। अन्य आत्मतेकेन विवेकेन उसता आत्मना स्वर्ग स्थान समापनाय विमृषद भी असद्वरई। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन उस्ता आत्मना स्वस्थान समानाय विमृषद् भी असद्वरै। अन्वय प्रत्यक्ष, व्यतिरेकेण तथा अप्रत्यक्ष रूप से, विवेकेन पौण विवेकता उसता शुद्ध हुआ, आत्मना मन से स्वर्ग सृष्टि स्थान पालन समान्ययी तथा विनाश द्वारा विमिश भी गंभीर विश्लेषण करने वालों के द्वारा असद बरई अत्यंत धीर भावर तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा धीर तथा दक्ष पुरुषों को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैष्णव से अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करें, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सब से अंतर के रूप में किया गया हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा धीर व्यक्ति वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा स्वयं ही शरीर तथा आत्मा के अंतर को जान सकता है। उदाहरणार्थ जो व्यक्ति अपने शरीर में अपने हाथ सिर इत्यादि पर विचार करता है वह निश्चय ही आत्मा तथा शरीर के अंतर को समझ सकता है। कोई यह नहीं कहता कि मैं सिर हूं, सभी यह कहते हैं मेरा सिर। अतयो दो संज्ञाएं हैं सिर तथा मैं, वे एक नहीं है यद्यपि एक संघट प्रतीत होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है जब हम शरीर का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें सिर हाथ पांव पेट रक्त अस्थियां मूत्र मल इत्यादि मिलते हैं, किंतु जब समों पर विचार हो चुका होता है तो फिर आत्मा कहाँ है। किंतु गंभीर मनुष्य इस वैदिक उपदेश का लाभ उठाता है, यतो आयमानी भूतानि जायन्ते येन जेतान जीवन्ति यत् प्रत्यात् विसन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। इस प्रकार वह समझ जा सकता है कि सिर हाथ तथा पूरा शरीर आत्मा के आधार पर विकसित हुए हैं। यदि भीतर आत्मा हो तो शरीर सिर हाथ पैर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। मृत बालक नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें आत्मा विद्यमान नहीं है। यदि शरीर के सतर्क विश्लेषण के बाद भी किसी को आत्मा का अस्तित्व न दिखे तो यह अज्ञान है। भला भौतिकवादी कार्यकलापों में पूरी तरह संलग्न व्यक्ति किस प्रकार उस आत्मा को समझ सकता है जो एक बाल की नोक के 10,000वें भाग जितना छोटा है। ऐसा व्यक्ति मूर्खता बस सोचता है कि भौतिक शरीर रसायनों के मेल से बना हुआ है। यद्यपि वह इन तत्वों को ढूंढ नहीं पाता किंतु वेद हमें बताते हैं कि रासायनिक मेल से प्राण नहीं बनता। प्राण तो आत्मा तथा परमात्मा है और शरीर उसी प्राण के ही आधार पर बढ़ता है। वृक्ष में लगा फल वृक्ष उपस्थित के कारण ही बढ़ता है और उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि वृक्ष न हो तो फल के बढ़ने तथा परिपक्व होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः शरीर के अस्तित्व के परे शरीर के भीतर परमात्मा तथा आत्मा है। भागवत गीता में बताए गए हैं आध्यात्मिक ज्ञान की यह पहली जानकारी है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, शरीर का अस्तित्व परमेश्वर तथा उन्हीं के अंश रूप जीव उपस्थित के कारण होता है। इसकी आगे व्याख्या भागवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मया तद्विधिं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि चाहं तेषु स्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझमें हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। वेदों का आदेश है सर्व कलमिदं ब्रह्म है, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है या कि ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। सूत्रे मणिगणा इव, प्रत्येक वस्तु भगवान पर टिकी हुई है। जिस प्रकार मोती सूत्र द्वारा एक धागे में गुथा रहता है, यह सूत्र प्रधान ब्रह्म है। यह परम कारण परमेश्वर है जिस पर प्रत्येक वस्तु आधारित है। मत्तः परंतरम नान्यम, इस प्रकार हमें चाहिए कि आत्मा तथा परमात्मा का अध्ययन करें जिस पर यह सारा भौतिक विराट जगत आश्रित है। इसकी व्याख्या इस वैदिक कथन से हो जाती है, यतो याइमानि भूतानि जायन्ते येन जेतानि जीवन्ति। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो इसको समझने के लिए आत्मा और शरीर का कैसे अलग किया जा सकता है, इसमें अध्याय श्लोक संख्या 23 में भी प्रकाश डाले हुए हैं। प्रत्येक जीव आत्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 स्थूल तत्वों से तथा बना है और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, किंतु इन्हीं शरीर में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं यह नहीं यह नहीं करके वो सिद्ध कर सकता है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो प्रहलाद महाराज बहुत साधारण रूप से बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, उसको समझने के लिए बता रहे हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है, इस उदाहरण को लेकर के कि हम अपने आप से पूछें, अपने शरीर के अंगों से पूछें कि मैं सिर हूं या हाथ हूं, पैर हूं, पेट हूं, देह हूं, तो अपने आप उत्तर मिलता है नहीं नहीं नहीं। अर्थात मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं हाथ भी नहीं हूं, मैं पैर भी नहीं हूं, मैं सिर भी नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान ही आत्मा है, लेकिन उसका बहुत सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है, छोटा कण है। परमात्मा विभू है, उनका कोई अंत नहीं है। आत्मा और परमात्मा गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन आकार रूप से बहुत छोटे हैं। यह आत्मा हर जीव के शरीर में विद्यमान रहता है और उसके साथ साथ परमात्मा भी है। यह आत्मा शरीर पांच तत्वों से बनी हुई शरीर से आच्छादित रहती है। आत्मा का शरीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर चल भी नहीं सकता है। शरीर के गुण से उसका कोई गुणात्मक नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते भिन्न है शरीर से, लेकिन शरीर को चलाने के लिए आत्मा की अति आवश्यकता है। आत्मा नहीं रहने से जीव जो है निर्जीव हो जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जैसे एक पेड़ में तमाम प्रकार के फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तमाम प्रकार के उसके परिवर्तन होते हैं, लेकिन पेड़ एज इट इज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फूल लगते हैं, फल लगते हैं, गिरते हैं, पतझड़ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पेड़ पेड़ ही रहता है। फिर से उसमें फूल पत्तियां आते हैं। उसी प्रकार से आत्मा जो है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शरीर को फर्क पड़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शरीर के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो समझता है कि ये शरीर नाशवान है, एक दिन इसका अंत होगा। वो केवल परमात्मा और आत्मा के बारे में सोचता है, वही बुद्धिजीवी है। आत्मा को किसी कपड़े की, किसी खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। वो ये अलग चीज है, उसको खुराक केवल हरि नाम है। हरि नाम के सिवाय आत्मा का खुराक कुछ नहीं है। आत्मा को अगर प्रफुल्लित करना है, आत्मा को सुखी करना है, तो केवल हरि नाम के द्वारा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके आत्मा खुश होती है। शरीर इससे खुश नहीं होती है। शरीर को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। तो हमें शरीर की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और आत्मा के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए प्रहलाद महाराज यहां पे बता रहे हैं। उदाहरण में बताते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। जिस प्रकार से समुद्र का एक बूंद पानी गुणात्मक रूप से समुद्र जैसा ही है, लेकिन उसको समुद्र नहीं बोल सकते हैं। उसकी लिमिटेशन है। उसको कह सकते हैं कि समुद्र का एक बूंद या एक शीशी, एक बाल्टी ऐसा पानी है, लेकिन उसमें सारे रासायनिक तत्व है। अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो सारे गुण समुद्र से मिलेंगे, लेकिन फिर भी समुद्र नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा जो है शरीर में है, इसलिए शरीर चलता है। आत्मा नहीं हो तो शरीर का उत्थान ही नहीं हो सकता, न वो बढ़ सकता है, न विकसित हो सकता है। जैसे एक मृतक बालक है, अगर उसमें देखा जाए तो किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं होता है, ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि चेतना उसमें से निकल गई है। जो विकसित करने वाला यंत्र है उसमें से निकल चुका है। हमारा शरीर जो उपकरण है, साधन है, न कि आत्मा है। इसके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं, आत्मा को पहचान सकते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से जानना चाहिए कि शरीर जो है ये आत्मा नहीं है। ये शरीर एक दिन मरने वाला है, आत्मा कभी मरता नहीं है, अजय अमर है। आत्मा का काम वह है, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार से जब यह जीर्ण शरीर हो जाता है तो इसको छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करता है, देहांतर करता है। आत्मा मरता नहीं है, इसलिए हमें किसी के मरने जीने से कोई शोक या खुशी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो असली आत्मा है वो तो मरता नहीं है। हम किसी ने ये नाशवान शरीर के लिए क्यों दुख खेद प्रकट करें? लेकिन हम मोहग्रस्त जीव होने के नाते इस शरीर से सुख और दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, हम बद्ध जीव हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं गुरु करना बहुत जरूरी है। तो कोई पूछ सकता है कैसे प्रहलाद महाराज कैसे गुरु कर लिए, उस बचपन से ही कैसे उन्होंने अपनी भक्ति को डेवलप कर लिया। तो प्रहलाद महाराज उन राक्षस के बच्चों को, अपने मित्रों को बता रहे हैं कि देखो भाई, मैंने भी ऐसे ही आसमान से नहीं टपक गया ज्ञान लेकर के। हमारी माता को जब इंद्र ले जा रहे थे, हमारे पिताजी तपस्या करने चले गए थे, उस समय नारद जी प्रकट हो गए और उन्होंने इंद्र जी को समझाया, देखो भाई पर स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और वो स्त्री ये नहीं है, ये स्त्री जो है पवित्र है। इंद्र जी ने कहा कि नहीं, मेरे को स्त्री से मतलब नहीं है, हम इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो जो हिरण्यकश्यपु का बीज है, उससे मुझे नुकसान है, और मैं उसको जब तक रखूंगा अपने पास जब तक वो बच्चा नहीं पैदा करेगी। नारद जी ने कहा कि देखिए, इस बच्चे से तो आपको बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इससे देवताओं को कोई क्षति नहीं हो सकती है। बहुत तरह से समझाने के बाद इंद्र समझ गए और कयादु को छोड़ दिए और उनको लेकर के नारद जी अपने आश्रम में आए। उनको बेटी शब्द से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बेटी
तुम आश्रम में निर्भीकता पूर्वक रहो, यहां पर किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं है। तो लेकिन वहां पर खाली रख नहीं दिया उन्होंने, नित्यम भागवत सेवया, जैसे आप सब ये भागवत सेवया कर रहे हैं, यहां पे सुन रहे हैं, उसी प्रकार से नित्य ही कायदु को नारद जी उपदेश देते थे और ज्ञान देते थे। और उस समय प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं पेट में पल रहा था, श्री राधा राज बिहारी भगवान की, गौर निताय भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राधा राज बिहारी भगवान की, शील प्रभुपाद की। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं उस समय अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ ने कहा था, एक वरदान मांगा था नारद जी से कि मैं जब तक बच्चा नहीं पैदा करूं, जब तक मेरे पति तपस्या करके ना आ जाए, इसलिए मैं तब तक पेट में रहा। और नारद जी द्वारा सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैंने भी गुरु किया, ऐसा नहीं बिना गुरु का आया हूं। लेकिन वो ज्ञान जो है वो मुझे अच्छी तरह से प्राप्त हुआ, मेरी माँ को उतने अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि माताएं जो होती हैं ममता की खान होती हैं, ममता और दया होती है उनके अंदर। मेरी माँ मेरे बारे में चिंतन करती थी, पति के बारे में चिंतन करती थी, तो वो धीरे 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 उसका ज्ञान लुप्त हो गया, वो ज्ञान भूल गई। लेकिन मेरा ज्ञान जो है मेरे अंदर अच्छी तरह से था, इसलिए वही नारद जी द्वारा जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो उपदेश मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि तुम सबको भी गुरु करना चाहिए। और कैसा गुरु करना चाहिए? जो परंपरा के अंतर्गत हो, जैसे नारद जी परंपरा के अंतर्गत थे, चार संप्रदायों में से थे, तो इस प्रकार की परंपरा में आप लोग ज्ञान का अर्जन कीजिए। तो हमें भी ये गुरु करने के पहले ये सोचना चाहिए कि हमें कैसा गुरु करना चाहिए। आप सब तो बड़े भाग्यशाली हो जो आप सबको प्रभुपाद जी प्राप्त हो गए हैं, ये परंपरा के अंतर्गत हैं। आप सबको कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी दया करके इस धराधाम पर, खास करके चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अवतरित हुए। जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार हो, इसको पहुंचाने के लिए प्रभुपाद जी ने अथक परिश्रम किया है। प्रभुपाद जी कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, कोई ऑर्डिनरी साधु नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ये चेतन महाप्रभु के प्रेरणा स्वरूप हैं। पूरे विश्व भर में प्रचार करने वाले श्रील प्रभुपाद जी धन्य हैं। आज कोई देश बाकी नहीं है जहां पर कृष्ण भावित लोग नहीं हैं। कश्मीर में इतना सब हलचल मचा हुआ है, हम गए थे कश्मीर में, ऐसे स्थान पर प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभुपाद जी को मैंने बहुत बहुत धन्य किया कि ऐसे ऐसे इलाके में कैसे भक्त लोग आके प्रचार कर रहे हैं। हम सब तो यहाँ बड़े अच्छी तरह से पुलिस के संरक्षक में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्या सुरक्षा है? ये तो अपना जान न्यौछावर करके ऐसे इलाके में जाते हैं जहां पे खिचड़ी बांटते हैं, जहां पे कीर्तन करते हैं, देख करके भय लगता है। कभी आप लोग कश्मीर में जाइए तो देखिए कि वहां प्रचार करना लोहे का चना चबाना जैसा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर प्रभुपाद जी ने भक्ति प्रचार को इतना सुलभ कर दिया है कि हरि नाम लेते ही सब एकदम कान लगा के सुनने लगते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का देन है। जब बिहार में झारखंड में कीर्तन कर रहे थे तो उस समय चार पग पशु लोग भी दो पैर पे कीर्तन करने लगे और डांस करने लगे, तो प्रभुपाद जी के इस पर अटूट विश्वास हुआ कि जब चार पग पशु को चैतन्य महाप्रभु ने नचाया है तो हम विदेश में दो पग पशुओं को क्यों नहीं नचा देंगे। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए हरिनाम में। हरिनाम अपने आप में पूर्ण है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण शक्ति अपनी नाम में भर दी है। नाम को इतनी साधारण चीज नहीं समझते। आप नाम ले रहे हैं तो भगवान का दर्शन ले रहे हैं और भगवान की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तीन बार जोर दे के कहा गया है कि हरि नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर कुछ होता था और कुछ बताया जाता था कलयुग में, तो कलिकाल में इतनी आसान भक्ति है फिर भी हम करने से विमुख हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज भगवान की है लेकिन उसे हम अपना बनाने लगते हैं, यही हमारा दुख का कारण है। और हम जानते हैं कि हम लोग मर रहे हैं, हमको भी मरना है, लेकिन ये समझते मैं थोड़ी मरने वाला हूं। हम किसी को जला के आते हैं फिर अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि उसकी क्या गति हुई, वही गति मेरी होगी, इसके पहले मुझे क्या करना चाहिए, ये हम समझ नहीं पाते हैं। यही हमारा दुख का कारण है। जन्म मृत्यु ही हमारे दुख का कारण है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना, यह हम समझ जाए तो हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा विज्ञान है। इसको समझना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को, हर जीव को। क्यों बार बार व्यक्ति मरता है, क्यों जन्म लेता है? और सबसे दुखद चीज यही है, मरते समय जो कष्ट होता है असहनीय होता है, क्योंकि उस समय अनुभव तो हम लोग को है नहीं, जब मरेंगे तो पता चलेगा, लेकिन बहुत कष्ट होता है। जन्म लेते समय भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि बड़े संकीर्ण रास्ते से आना पड़ता है, उसको आने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है। और पेट में कितनी दुर्गति सहता है, कितने उसको जर्म्स वगैरह काटते हैं, कितनी दुर्गंध में रहता है, और वहां पे प्रतिज्ञा करता है, प्रभु अगर एक बार फिर से बाहर आ जाऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो धीरे धीरे माया का आवरण उसके ऊपर चढ़ता जाता है, और भगवान से जो प्रतिज्ञा किया था वो भूलता जाता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप है कृष्णदास बनने के लिए, लेकिन माया का दास धीरे धीरे बनने लगता है। धीरे धीरे माँ को पहचानता है, फिर पिताजी को पहचानता है, फिर आसक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है, माँ की भी आसक्ति बढ़ती जाती है, पिता का भी आसक्ति बढ़ती जाती है। इसी लोभ में फंस के पूरा जिंदगी इंसान गंवा देता है, जिंदगी भर इस भरण पोषण के चक्कर में फंस जाता है। और वो इस फंदे से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। भगवान तो भेजे थे, अकेले भेजे थे, ना किसी के साथ जोड़ के भेजे थे। स्त्री के साथ भेजे थे या किसी बाल बच्चे के साथ भेजा था भगवान ने, वहां से व्यक्ति आया था केवल भक्ति करने के लिए। हमारा यह असली घर नहीं है, हमारा असली घर है गोलोक धाम। हमें वहां गोलोक धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस अनित्य जगत में हम प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, गधे जैसा मेहनत करते हैं सुख शांति ढूंढने के लिए। दुखालयम अशाश्वत जगत में कहां से सुखालयम हो सकता है, सुख कहां मिल सकता है? अर्थात यहां सुख की कामना करनी नहीं चाहिए, सुख है ही नहीं, दुखालयम है, अशाश्वत है, ये संसार झूठा है। जो भी रिश्ते हम बना रहे हैं झूठे रिश्ते हैं, और ये देह के जो रिश्ते हैं यही हमारे दुख के कारण है। इनको छोड़ने के लिए फिर हमें बहुत कष्ट होता है। ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये पत्नी है, ये प्रॉपर्टी है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, जो भी है हमारे दुख का कारण यही है। हम हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि ये गाड़ी का पेट्रोल कैसे आएगा, बंगले का मेंटेनेंस कैसे चलेगा, कंपनी का मेंटेनेंस कैसे होगा, बच्चों की देखभाल कैसे होगी, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। हम ये भूल जाते हैं कि जीव का असली कर्तव्य क्या है। वो यही सोचते हैं ये हमारा गृहस्थ लाइफ जो है सबसे अच्छा है, अपना गृहस्थी चलाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन ये असली कर्तव्य नहीं है। असली कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान को अपना मानना, अपना सुहृद मानना। ये संसार के लोग हमारे सुहृद नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा अपने लेक्चर में बताते हैं, आप जिसको खुश करना चाहते हैं करके देख लो, ना वो खुश होगा ना आप खुश होंगे। बहुत समझने की बात है। हर व्यक्ति सबको खुश करने के चक्कर में पड़ा, अपने परिवार को खुश कर रहा है, समाज को खुश कर रहा है, किसी को खुश करने की उसकी लालसा है, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा है उससे, कोई न कोई नाराज हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि महात्मा गांधी सारा दुनिया को खुश करना चाहते थे, एक आदमी नाराज होकर गोली मार दिया। उसी प्रकार से हम इस समाज को खुश करना चाहते हैं, चाहे परिवार को खुश करना चाहते हैं, कोई न कोई नाराज हो जाएगा। कुछ लोग इस अनुभव तक पहुंच गए होंगे, कुछ पहुंचने वाले होंगे। एक वृद्ध आदमी से कल मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल था उत्तर प्रदेश में। तो हमने कहा आप भक्ति भी करते हैं? कहा हाँ करते हैं। कम की कौन सी भक्ति करते हैं? आप भागवत गीता कभी देखें? नहीं, भागवत गीता नहीं देखते हैं, ऐसे मन से भक्ति करते हैं। अरे ये मन तो बड़ा चंचल है, अर्जुन जैसे भक्त के मन को बस में करना मुश्किल था, हम आप कैसे अपने मन को बस में कर सकते हैं, मन से कैसे भक्ति कर सकते हैं? गुरु के बिना आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? गुरु के बिना कैसे कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं? गुरु एक ऐसा साधन है जो हमें भगवान के पास पहुंचाता है, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं तो गुरु करते हैं, वो परंपरा का हनन नहीं करते हैं कि मैं तो जगत गुरु हूं, मुझे गुरु करने की क्या जरूरत। भगवान कृष्ण भी संदीपनी मुनि के पास अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, लेकिन हम कहते हैं हाँ हमने तो गुरु नहीं किया है लेकिन हम जानते हैं। तो क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते हो, माया के दास हो। माया तुमको ग्रसित कर ली है और इस चंगुल से छूटना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक कुआं है उसमें पानी नहीं है, उसमें व्यक्ति गिर गया है अंधकूप में, अब उसे निकालने के लिए निकलने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए ना, तो कोई बलवान व्यक्ति आएगा तभी तो उसको निकाल सकता है, कोई कमजोर रहेगा रस्सी डालेगा उस वो भी खींच के अंदर चला जाएगा, उसके पाप के भार इतने हैं कि वो भी खींच लेगा उसको। तो इसलिए हमें बलवान व्यक्ति ढूंढने की जरूरत होती है, तो बलवान दक्ष भक्ति में जो गुरु है उस बलवान व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो परंपरा के अंतर्गत है। इस आध्यात्मिक दुनिया में अगर अंधकूप से निकालने वाला कोई व्यक्ति है तो गुरु है, नहीं तो इस भौतिक संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है। बार बार इसमें जन्म लेंगे मरेंगे, लेकिन हम जब तक गुरु नहीं करेंगे इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता है, 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगा। सब बन के आए हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम साक्षात ऐसे प्रकट हो गए आदमी की योनि में आ गए, 84 लाख योनिया में सब लोग आए, हम सभी आए। हम सोचते थोड़ी हम कुत्ता बिल्ली बने थे, हम थोड़ी कीड़े पतंग बने थे, सब बन के आए हैं। जैसे ये बाउंड्री हरे कृष्ण की बाउंड्री है, चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई, एक जगह गेट है, एक अंधा व्यक्ति को इसमें डाल दिया जाए, उसको कह दिया जाए कि भैया यहां पे कहीं गेट भी है बाहर निकलने के लिए, तो दीवाल को टच टच करते हुए वो जाएगा, जब गेट आएगा तो उसके सर में खुजली हो जाएगी, ऐसे खुजली करते करते गेट क्रॉस कर लेगा, फिर उसको गेट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोगों को माया रूपी खुजली हो जाती है, जब भक्ति का समय आता है तो खुजली के द्वारा हम उस भक्ति को टाल देते हैं, चलो बाद में कर देंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज खार घर में लेक्चर दे रहे थे, उसमें बहुत से आईआईटी के बच्चे थे, उनको बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में भक्ति किया, ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भक्ति किया, आप सब भी भक्ति में लग जाइए। तो लड़कों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि महाराज क्या बोल रहे हैं, अरे अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा खेलने खाने का समय है। तो लास्ट में जब महाराज बोले कोई किसी का प्रश्न है, तो एक बच्चा उठ के खड़ा होकर कह रहा है कि मेरा एक प्रश्न है। तो बोले क्या प्रश्न है? उसने कहा आप तो वृद्ध हो गए हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, हम थोड़ी वृद्ध हुए हैं, हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे। महाराज ने उत्तर दिया मैं तो कहता हूं कि आप मेरे से वृद्ध हो, इसकी कोई सफाई दे सकते हैं? तो लड़का बोला हां मैं यंग हूं, मैं बता सकता हूं मैं आपसे जवान हूं। महाराज ने कहा जो मृत्यु के जितना नजदीक है वो उतना वृद्ध है। हमें क्या पता हम वृद्ध होके मरेंगे, मृत्यु एनी टाइम आ सकती है, इसलिए मृत्यु से बचने के लिए भक्ति पहले करना चाहिए। मृत्यु सबको मारती है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मृत्यु छोड़ती है, लेकिन मृत्यु पर भी विजय पाने के लिए भक्ति है। हम भक्ति करेंगे तो मृत्यु के सर पर पैर रख के चले जाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन भागवतम सुने, श्राप के अनुसार तक्षक आया डसने के लिए, लेकिन साथ में काल भी आया, काल सामने खड़ा हो गया परीक्षित महाराज के, लेकिन उसके पीछे भगवान का विमान भी आया। तो परीक्षित महाराज अपना पैर काल के सर पर रख करके अब विमान पर आरूढ़ हो गए, भगवत धाम चले गए। तो भक्ति ऐसा मार्ग है कि हमें भगवत धाम जाने के लिए हमेशा मदद करता है, और ये सत्य है, ये चीज को सत्य कहते हैं, ये सत्य को पहचानने की जरूरत है, और सत्य को पहचान केवल गुरु करा सकता है, क्योंकि सत्य को गुरु जानता है। इसलिए गुरु जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए प्रहलाद महाराज पुष्टि करते हैं कि हमने भी गुरु किया था और हमें तो नारद जी ने कृपा करके अपने आप ज्ञान दे दिया। बड़े कृपालु हैं नारद जी, बड़े बड़े हंटरों को नारद जी ने तार दिया है। साधु ये नहीं देख, जिस प्रकार से बादल हर जगह बरसात करता है, ये नहीं देखता यहाँ ऊसर है, बंजर है, जंगल है, यहाँ क्यों करूं, जहां पे खेती है वहां ही करना चाहिए। बादल हर जगह निष्पक्ष भाव से बारिश करता है, उसी प्रकार से गुरु जो होता है हर जीव पर दया करता है। उसके लिए ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं है, केवल शरणागति चाहिए। गुरु के पास विनीत भाव से जाना चाहिए और उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। गुरु सक्षम है, वो भगवान के पास आपको पहुंचा सकते हैं, और कोई उपाय रास्ता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सारे दुनिया में इस्कॉन की शाखाएं खोल दी है कि लोग, कलयुग के लोग आए, इनकी आयु की अवधि बहुत कम है, इस कम अवधि में भगवत भक्ति प्राप्त करें। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कलयुग के लोगों के लिए कि चार नियम का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और हमको प्रसाद अर्पण करना, इतने से हम उसको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हम इससे भी, इतनी साधारण भक्ति से भी वंचित हैं। सतयुग त्रेतायुग में 10,000 साल एक एक पैर की अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते थे, तब कहीं उन्हें देवताओं का वर मिलता था। चैतन्य महाप्रभु इतना आसान कर दिए कि हम फिर भी वो फायदा नहीं उठा सकते। हमें 10,000 साल तो नहीं, 10 मिनट भी एक अंगूठा पे नहीं खड़ा होना है, 10 मिनट का 5 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के ऊपर। एक पैर की एक अंगूठे पे खड़े होकर के हिरण्यकश्यप ने 10,000 साल तपस्या किया, तो ब्रह्मा का वर मिला उनको, वो भी भगवान का वर नहीं मिला, और वर भी मिला तो उसका वांछित वर नहीं मिला। उसने कहा हमें अजय अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो मैं ही नहीं, कहां से आपको बना दूं। ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। तो इतने साल तपस्या करने के बाद वो अमर नहीं हो सका, क्योंकि देवी देवता आपको कुछ अभिष्ट पद नहीं दे सकते हैं, अभिष्ट वरदान नहीं दे सकते हैं, उनका वरदान क्षण भंगुर होगा। जो भगवान का वरदान है वो भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में ले जाते हैं, इस मृत लोक में फिर से बार बार कष्ट भोगने के लिए नहीं भेजते हैं। यह मृत लोक जो है कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है, और ये प्रकृति जो है भगवान की खुशी के लिए बनाई गई है, भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए बनाए हैं। लेकिन इस प्रकृति के अंदर हम अपनी प्रसन्नता ढूंढते हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए यहां कोई भी चीज नहीं है, प्रयास मत कीजिए। सारी सृष्टि भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। लेकिन हम जब थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो सोचते हैं मैं करता हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो जाता है, बल या धन या कुछ भी वैभव मिल जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। हमें प्रतिक्षण भगवान की याद करनी चाहिए। एक मिनट भी अगर हम जैसे ये मोमेंट में सब दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, प्रभुपाद जी ने ये थोड़ी बताया कि दोपहर के बाद खेती करना है। हमेशा सेवा करते रहिए तो आपका दिमाग हमेशा कृष्ण में लगा रहेगा। आज जो बाहरी लोग हैं वो एक मिनट गए भगवान का दर्शन किए, फिर माया में पड़ गए, अपनी माया में भाग रहे हैं दिन रात, परिश्रम कर रहे हैं, हरे कृष्ण भक्त थोड़ी ये परिश्रम करते हैं, भागते हैं कहीं माया में। यहाँ पे बड़े अच्छे से अभी क्लास के बाद प्रसाद होगा, भगवान को ऑफरिंग किया हुआ प्रसाद मिलेगा बहुत बढ़िया, और उसके बाद अपने अपने सेवा में लग जाएंगे। ये क्या खेती कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं सबको प्रदान करता हूं उसके कर्म के अनुसार, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको मिलता है। तो अच्छा कर्म जब भक्ति करना है तो हम दूसरा अथक परिश्रम क्यों करें? हमें प्रसाद की जरूरत, प्रसाद मिलता है, वस्त्र की जरूरत, वस्त्र मिलता है, केवल भगवान का दर्शन करना, भगवान के नाम का जप करना, यही एक सेवा है यहां पे। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें प्रसाद ही खाना चाहिए, कहीं जीव की लालसा से कहीं कुछ मिला जानवर की तरह खा लिए तो हमारी भक्ति नष्ट होती है उसमें। जानवर प्रवृत्ति है, कहीं पार्टी में गए वहां खा लिए, चलो एक दिन खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये 21 दिन उसका असर रहता है आपके पेट के अंदर, ये 21 दिन के बाद उसकी शुद्धि होती है। इसलिए भगवान के प्रसाद के सिवा कभी भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद अपने आप में इतना पूर्ण है, हमें मोक्ष दिलाता है, भगवत प्राप्ति दिलाता है। भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद। प्रभुपाद जी कहते थे ये जो चित्त रूपी दर्पण पे जो धूल जमा हो गई है, तो दर्पण पे जब धूल हो जाता है तो चेहरा दिखाई नहीं देता है, तो उसे कपड़े से पोंछने से फिर आप अपना चेहरा देख सकते हैं दर्पण में। लेकिन हमारे चित्र रूपी दर्पण पे जो जन्म जन्मांतर से मैल जमा हो गई है उसको कैसे साफ करेंगे? उसको साफ करने के लिए केवल प्रसाद और हरे कृष्ण महामंत्र यही साफ कर सकता है उसके अंदर जाके, और कोई डिटर्जेंट पाउडर ब्रश नहीं पहुंचेगा वहां पे। महामंत्र ऐसा जाके जितनी मैल है उसको खरोच के साफ कर देगा, आपका चित्त स्वच्छ कर देगा, चिंत मार्जन कर देगा, प्रसाद उसका मार्जन कर देगा। चैतन्य महाप्रभु ने दो ही साधन बताया है चित्त मार्जन के लिए, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हम अपने चित्त को मार्जन करने के लिए महामंत्र द्वारा कर सकते हैं, प्रसाद द्वारा कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जहां भी रहें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, हरदम कीर्तन करते रहिए। चारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, जहां रहो जहां भी जिसको भी मिलो उसको कुछ नहीं दे सकते हैं तो कृष्ण नाम तो दीजिए। कृष्ण नाम से खुश हो जाएगा, प्रसाद दीजिए उसको। हमारे कृष्ण भक्त जहां जाते हैं प्रसाद लेके जाते हैं, कोई दूसरा गिफ्ट नहीं देते हैं, प्रसाद देते हैं, एक पेड़ा देंगे, अलम पेड़ा देंगे, और हरे कृष्ण बोलेंगे, पहुंचते हरे कृष्ण बोलेंगे। तो एक बार तो हरे कृष्ण वो भी बोलेगा, चाहे धनी है चाहे गरीब है कोई भी है, एक बार तो नाम ले लिया दिन भर में उनको देख करके। तो प्रभुपाद जी कहते थे जिस गली से हमारे भक्त निकलेंगे उस गली में उनको देख करके अगर उनका टिंगल भी करेगा कोई, वो टकला हरे कृष्णा ऐसा करेगा तो भी उसका उद्धार होगा, क्योंकि एक बार नाम ले रहा है, चाहे वो फिरकी लेके ले रहा है चाहे जैसे ले रहा है, लेकिन दिन भर तो नाम नहीं ले पाता है, भला उनको देख करके तो नाम लिया, तो भगवान उसका भी सुनने को तैयार है। तो प्रभुपाद जी ने यह ड्रेस क्यों पहनाया? यह हमारा संस्कृति है, हमारा धोती कुर्ता पहनना हमारा संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। साड़ी पहनना हमारी माताओं की संस्कृति है, साड़ी पहनना भूल गई। फिर से प्रभुपाद जी उस संस्कृति में सबको प्रयास करके ला रहे हैं। जितने भक्त बन गए हैं, भक्तिन बन गई हैं, वो साड़ियां पहन रही हैं, जो भक्त बन गए धोती कुर्ता पहन रहे। तो जहां भी जाते हैं, अगर हम देखते हैं कि किसी हम अनभी की जगह पर आ गए हैं, अगर एक कृष्ण भक्त दिखाई दे देता है तो अपने को साहस हो जाता है, एक भक्त है यहाँ पे, इस डिस्ट्रिक्ट में एक भक्त है, कश्मीर में एक भक्त है, बड़ा साहस होता है। नहीं तो चारों तरफ बंदूक लेके खड़े हैं लोग, ऐसे निशाना देख रहे हैं, तो कोई आतंकी तो नहीं आ जाता है। लेकिन कृष्ण भक्त की कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण की कवच पहन के घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार की बंदूक की डर नहीं है, आतंकवादी की डर नहीं है। आतंकवादी को भी देख के हरे कृष्ण बोलेंगे, वो भी कहेगा हरे कृष्ण, अरे जाने दो हरे कृष्ण वाले। तो भी हम इस मोमेंट में आने के लिए बहुत संकोच कर रहे हैं। इतना बड़ा शहर है बंबई, कितने लोग यहां पे कृष्ण भावना भावित हैं? सवेरे मंगल आरती में कितने लोग आते हैं भगवान के दर्शन के लिए? अगर कह दिया जाए कि आज 4 बजे हेमा मालिनी आ रही है दरिया के किनारे जुहू पे, और अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं, तो पुलिस बंदोबस्त करना पड़ेगा, और कितने लोग मर जाएंगे दब के उसमें, जिस दर्शन का कोई मतलब नहीं है, उस दर्शन के लिए इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन भगवान के दर्शन के लिए कितने भाग्यशाली व्यक्ति आते हैं, देख के पीछे रोना आता है कि इतने ही भाग्यशाली हैं पूरे महाराष्ट्र में, बंबई में इतना पॉपुलेशन यहां है। तो भाग्यवान जीव को ही कृष्ण भक्ति मिलती है। एन किन प्रकार एन किसी प्रकार से अगर आप जुड़ गए हरे कृष्ण मूवमेंट से, आप बड़े भाग्यशाली हैं, चाहे माता हो चाहे पिता हो कोई भी हो, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं हरे कृष्ण का मेंबर बन गया हूं, हम हरे कृष्ण से महामंत्र ले लिया हूं, मंत्र जाप करता हूं करती हूं, बड़ा गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। यह सनातन धर्म का प्रचार किया है प्रभुपाद जी ने, ऐसे तमाम धर्म हैं जो 200 साल से, 500 साल से, 1000 साल से, 1200 साल से, मुस्लिम धर्म 1200 साल से है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया, सर्व धर्माने परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सारे धर्म हैं, इन धर्मों के चक्कर में मत पड़ो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि भगवान गणेश के शरण में जाओ, इनके शरण में जाओ, देवी की शरण में जाओ, अगर ऐसा कुछ होता तो वो भी लिख देते। लेकिन बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया है, सर्व धर्मान प्रतिज्ञा, ये जीव तुम सभी धर्मों के चक्कर में पड़ोगे तो भगवान को नहीं पहचान पाओगे और एकदम भटकते रह जाओगे, असली राह नहीं मिलेगी। श्री गीता में बता दिया 18वें अध्याय में, सर्व धर्माने प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सोच मत करो, आप चिंता मत करो, मुझे सरेंडर करो खाली। कितना अच्छा भगवान ने बताया है गीता में। हम गीता का अनुसरण नहीं करते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञानता में है, अंधकार में है। गीता हमें अंधकार से प्रकाश में लाती है। गीता भगवान के मुखार बिंदु से निकली है, कोई मनगढ़ंत किताब नहीं है, भगवान के चरण से निकली हुई गंगा सारी दुनिया को तार रही है। गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं लोग, कुंभ में क्यों जाते हैं? कि मेरा जन्म जन्मांतर का पाप कट जाए। गंगा माई में जाके स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पाप धोते हैं। जो भगवान की नख से निकली है और ये भगवान के मुख से निकली है, मुख और नख पैर शुद्र होता है, शुद्र से पैर से निकली हुई गंगा पूरे दुनिया को तार रही है, तो भगवान के मुख से निकली हुई गीता क्यों नहीं तारेगी? इसका तो महात्मा गंगा जी से बड़ा है, क्योंकि मुखार बिंदु से निकली है। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इसलिए हमारे भक्त पूरे विश्व भर में गीता अनुष्ठान करते हैं, गीता वितरण करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था कि एक महीना कंसेशन रेट में गीता जयंती के टाइम गीता वितरण के लिए सभी भक्त, तो सब भक्त सवेरे ही निकल जाते हैं अपना अपना टिफिन लेकर के गीता वितरण करने। लेकिन उसमें जो दुर्भाग्यशाली हो कहते हैं हरे कृष्णा वाले चारों तरफ बुक का स्टॉल लगा दिए हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि हमारे उद्धार के लिए ये बुक लेके खड़े हैं धूप में। जो कदाचित व्यक्ति खरीद लेता है एक बुक, अगर बाई चांस एक श्लोक पढ़ लिया तो उसका जीवन चर्या बदल सकती है, क्योंकि गीता के हर श्लोक में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति भरी हुई है। एक श्लोक भी पढ़ा तो उसके अंदर शक्ति घुस गई, अब दूसरा पढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए घर घर में गीता होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो क्या ऐसे थोड़ी एक इतना गीता छपवाने का अनुष्ठान किया है। हर साल सब सोचते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं हम पिछले साल लिए थे, ठीक है पिछले साल लिए थे तो बांट दीजिए और इस साल भी लेके बांट दीजिए, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो विद्यादान कीजिए। अगर हमारे पास है तो भी हम गीता खरीदना चाहिए, किसी असहाय व्यक्ति को जो गरीब है उसको देना चाहिए और प्रचार करना चाहिए कि गीता पढ़िए। अगर किसी को दान देना है तो गीता दान देना चाहिए, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि गीता प्रचार के लिए, प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए बड़े सतर्कता से, बड़े दृढ़ता से, बड़े विश्वास से, बड़े हिम्मत से आगे बढ़िए। शर्म करने की बात नहीं है, जो जहां है वहां ही से प्रचार करें। गृहस्थ लाइफ पे अपने घर में है, अपना घर बार देखे, लेकिन प्रचार न छोड़े, भगवान का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी की इच्छा ये नहीं थी कि सारा दुनिया भक्त बन के मंदिर में आ जाए, और सब दुनिया भर के लोग आ जाएंगे तो रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, भीड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सब कृपा करके जो जहां है वहां ही प्रचार कीजिए, कम से कम हर व्यक्ति अपने घर में घर के सदस्यों को भक्त बना दे, अपने नाते रिश्तेदारों को भक्त बना दे, अपने नौकर चाकर को भक्त बना दे। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं मैं उसका बहुत ऋणी हो जाऊंगा। और हर व्यक्ति इतना समझ करके करे तो सारा विश्व एक दिन भक्त बन जाएगा। विश्व भर में हरे कृष्ण मूवमेंट का झंडा फहरा जाएगा। कोई जाने की कहीं जरूरत नहीं है, लाल कपड़ा पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। ये अनुष्ठान करना चाहिए कि हम अपने बेटे को भक्त बनाएंगे, अपनी पत्नी को भक्त बनाएंगे, अपने परिवार को भक्त बनाएंगे, अपने समाज को भक्त बनाएंगे, अपने नौकर चाकर को भक्त बनाएंगे, जो भी उससे संबंध होता है उसको भक्त बना दें। जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश दीजिए सबको और कृष्ण भक्त बनाइए। यही सबसे बड़ा कर्म धर्म है, मनुष्य मुनि में आने का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है जो हरे कृष्ण वाले कर रहे हैं। मामूली काम नहीं है ये, भाग्यशाली व्यक्ति का काम है प्रचार करना, भगवान का प्रचार कर। बड़े बड़े नेताओं का लोग प्रचार करते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। वो तो दिल्ली में बैठा उसके नारे लगा के मर जाते हैं यहाँ पे, कुत्ते बिल्ली की तरह। हम भगवान का प्रचार करने में इतना शर्माते हैं, नहीं जाते हैं, समय नहीं देते हैं। आप सुनते होंगे जब प्रचार कार्य चलता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत सारे पेपर में आते हैं, वहां पे एक आदमी मार गया, वो व्यक्ति मार गया, उसको उठा ले गया, उसको काट दिया, फूंक दिया, जला दिया, ये सब बातें सुनते हैं। वो किसका प्रचार करते हैं? असत्य का। और हम सत्य का प्रचार करने के लिए साहस से नहीं बढ़ते हैं। आज जितने भी नेता हैं, जितने भी पहले जो राजा बनते थे वो धार्मिक होते थे। युधिष्ठिर महाराज धार्मिक थे। अब जो गुंडा बदमाश बनते हैं, और गुंडा बदमाश देश की क्या सुरक्षा करेंगे, देश को क्या बचाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रभुपाद जी ने कहा था, आप गीता का प्रचार करो, बांग्लादेश के चक्कर में क्यों पड़े हैं? गीता का प्रचार करें, सारा विश्व आपका हो जाएगा। लेकिन नेताओं की समझ में आता नहीं है, वो समझते हैं मैं जो कर रहा हूं यही सही है। गीता पढ़ लिया तो सारा ज्ञान अपने आप आ जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि गीता का प्रचार करिए। एक हमारे भक्त वहां पीछे बैठे हुए हैं, देखिए एक गीता का प्रचार करते हैं। क्या नाम है प्रभु जी आपका? नाम क्या है? देखिए गीता का इतना अच्छा प्रचार करते हैं, इनको इतनी निष्ठा है गुरु के प्रति और गीता के प्रति। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, भगवान का प्रचार करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अब प्रभुपाद जी बताते हैं सब एजुकेशन जीरो है अगर भक्ति नहीं है तो। MBA किया हो, कुछ भी किया हो, अगर भक्ति नहीं है तो सारी डिग्रियां जीरो है। सबसे बड़ी डिग्री प्राप्त कर हो रही है प्रभुपाद जी के मंदिर में। अगर भक्ति है तो सारी डिग्री काम करेगी, भक्ति नहीं है तो सब डिग्री फेल हो गया। तो मेरे छोटी बुद्धि द्वारा कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। मैंने प्रयास किया प्रभुपाद जी की वाणी का कि आप सबको हृदय में टच करने के लिए, और मुझे यकीन भी है कि कोई उठे नहीं है तो जरूर थोड़ा टच किया होगा प्रभुपाद जी का संदेश। हरे कृष्ण। श्री राधा राज बिहारी भगवान की, गौर निताय भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल।